यूं तो अनहद के सही अर्थ को समझ पाना उतना ही कठिन है जितना आज के समय में मनुष्य का ब्रह्मांड को नाप पाना है। अनहद के बारे में हर व्यक्ति, हर संत महात्मा, हर प्रकार का वह व्यक्ति जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, वह अपने निजी अनुभवों के आधार पर, या फिर वह व्यक्ति जो केवल पाठक है और पुस्तकों के आधार पर अनहद के अर्थ का बखान करना चाहता है, सबके अपने निजी अनुभव अनहद के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उन अर्थों का निर्माण भी अनहद ही करेगा। अगर अनहद के अर्थ को मैं अपने निजी अनुभवों के आधार पर स्वामी हरिहर चैतन्य परमहंस अनहद योगी समझाना चाहूं, तो इसका बड़ा सहज अर्थ अगर सामान्य भाव से समझा जाए तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अन और हद, वह जिसकी कोई हद ही ना हो और यही निश्चित है कि वह अनहद होगा, अर्थात जिसकी कोई सीमा ही ना हो। यही कारण है कि अनहद के शब्द का प्रयोग हम ब्रह्म या ईश्वर के एक विशेषक के रूप में भी करते आए हैं। अनेक स्थानों पर हम इसे प्रयोग करते हैं ईश्वर के नाम के साथ में, और बुद्धिजनों ने ब्रह्मांड की विवेचना करते हुए भी अनहद शब्द को इसी तरह से प्रयोग किया है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिज देखें वैसी अनहद को समझना जितना सहज है उतना कठिन भी है। और अनुभव के आधार पर मैं यदि कहूँ तो अनहद को समझना कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा निजी अनुभव है। मेरी निगाह में अनहद की सीमा है, केवल योगियों के मध्य से ही अनहद को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। वो ब्रह्मांड जिसकी कोई हद नहीं, पर योगी उस ब्रह्मांड को सीमित दायरे में ला सकते हैं। यूं तो वेद पुराण इसके साक्षी हैं, ब्रह्मांड देह में ही बसता है, यथा पिंडा तथा ब्रह्मांडा, ऐसे शब्द आपको वेदों में मिल जाएंगे। ब्रह्मांड देह में ही बसता है। अगर विज्ञान के दायरे से कहें तो आज का विज्ञान भी यही मानता है कि पूर्ण ब्रह्मांड भी किसी मनुष्य के मस्तिष्क की तरह ही है, लेकिन समझना सहज नहीं है। अभी मनुष्य को ब्रह्मांड की सीमाओं को नापने में आयु के अनुसार करोड़ों अरबों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन अगर योगी आधार या अध्यात्म के आधार पर अनहद को हम जानना चाहें तो निश्चित है कि हम वेदों की उस उपमा को कह सकते हैं कि ब्रह्मांड चेतन रूप में हमारे ही देह में बसता है। चेतन ब्रह्मांड ही ब्रह्म का ईश्वरीय साकार रूप है। जिस प्रकार से वेद पुराण साक्षी हैं कि ब्रह्मांड देह में बसता है, यही नहीं करोड़ों ब्रह्मांड हमारी देह में बसते हैं, लेकिन बाह्य विज्ञान कहता है कि इसे नाप पाना अभी मनुष्य की सोच से भी परे है, क्योंकि मनुष्य उम्र के दायरे में, आयु के दायरे में आता है, समय के दायरे में आता है, और ऐसे में ना मनुष्य के पास आज के समय में इतनी स्पीड है और ना इतनी आयु है। लेकिन करोड़ों करोड़ों वर्षों से जब जब धरती मिटती और बनती रही है, उसी आधार पर मैं आपको अनुभव का आधार कहता हूँ कि ब्रह्मांड सही मायने में ब्रह्मांड में भी चेतन है, और वही ब्रह्मांड हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से चेतन है, और इसी ब्रह्मांड को समझने का सही रूप अनहद ही है, और अनहद को अपने भीतर में उसी अनहद को हद में लाने की क्रिया ही योगिक क्रिया कहलाती है। अगर हम चाहें तो अनहद को अपनी हद में ला सकते हैं। इसका सबसे सहज तरीका योग के माध्यम से ही बताया जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से जानना चाहते हैं तो योग का सारा सर्वोपरि है। आगे हम बात करेंगे ध्वनि की उत्पत्ति पर, अनहद नाद पर और बहुत सारी चीज़ें। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं आपको अनहद के सही मायने में जो वैदिक अर्थ को भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा होए, तो थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास मैं आपको करता रहूँगा। और मेरी ये जो आप वाणी को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट तक रखें ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। तो चलिए, अनुभवों के आधार पर मैं अगली बार आपको बताऊँगा कि अनहद क्या है और अनहद के अर्थ को वैदिक और संस्कृत के शब्दों की संधि विच्छेद के अनुसार भी बताने का प्रयास करूँगा। तो नमस्कार, जय श्री हरि। कल मिलेंगे एक नई वाणी के साथ। यूँ तो अनहद के सही अर्थ को समझ पाना उतना ही कठिन है जितना आज के समय में मनुष्य का ब्रह्मांड को नाप पाना है। अनहद के बारे में हर व्यक्ति, हर संत महात्मा, हर प्रकार का वह व्यक्ति जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, वह अपने निजी अनुभवों के आधार पर, या फिर वह व्यक्ति जो केवल पाठक है और पुस्तकों के आधार पर अनहद के अर्थ का बखान करना चाहता है, सबके अपने निजी अनुभव अनहद के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उन अर्थों का निर्माण भी अनहद ही करेगा। अगर अनहद के अर्थ को मैं अपने निजी अनुभवों के आधार पर स्वामी हरिहर चैतन्य परमहंस अनहद योगी समझाना चाहूं, तो इसका बड़ा सहज अर्थ अगर सामान्य भाव से समझा जाए तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अन और हद, वह जिसकी कोई हद ही ना हो और यही निश्चित है कि वह अनहद होगा, अर्थात जिसकी कोई सीमा ही ना हो। यही कारण है कि अनहद के शब्द का प्रयोग हम ब्रह्म या ईश्वर के एक विशेषक के रूप में भी करते आए हैं। अनेक स्थानों पर हम इसे प्रयोग करते हैं ईश्वर के नाम के साथ में, और बुद्धिजनों ने ब्रह्मांड की विवेचना करते हुए भी अनहद शब्द को इसी तरह से प्रयोग किया है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिज देखी वैसी अनहद को समझना जितना सहज है उतना कठिन भी है। और अनुभव के आधार पर मैं यदि कहूँ तो अनहद को समझना कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव है। मेरी निगाह में अनहद की सीमा है। केवल योगियों के मध्य से ही अनहद को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। वो ब्रह्मांड जिसकी कोई हद नहीं, पर योगी उस ब्रह्मांड को सीमित दायरे में ला सकते हैं। यूँ तो वेद पुराण इसके साक्षी हैं, ब्रह्मांड देह में ही बसता है। यथा पिंडा तथा ब्रह्मांडा, ऐसे शब्द आपको वेदों में मिल जाएंगे। ब्रह्मांड देह में ही बसता है। अगर विज्ञान के दायरे से कहें तो आज का विज्ञान भी यही मानता है कि पूर्ण ब्रह्मांड भी किसी मनुष्य के मस्तिष्क की तरह ही है, लेकिन समझना सहज नहीं है। अभी मनुष्य को ब्रह्मांड की सीमाओं को नापने में आयु के अनुसार करोड़ों अरबों वर्ष लग सकते हैं। लेकिन अगर योगी आधार या अध्यात्म के आधार पर अनहद को हम जानना चाहें तो निश्चित है कि हम वेदों की उस उपमा को कह सकते हैं कि ब्रह्मांड चेतन रूप में हमारे ही देह में बसता है। चेतन ब्रह्मांड ही ब्रह्म का ईश्वरीय साकार रूप है। जिस प्रकार से वेद पुराण साक्षी हैं कि ब्रह्मांड देह में बसता है, यही नहीं करोड़ों ब्रह्मांड हमारी देह में बसते हैं, लेकिन बाह्य विज्ञान कहता है कि इसे नाप पाना अभी मनुष्य की सोच से भी परे है। क्योंकि मनुष्य उम्र के दायरे में, आयु के दायरे में आता है, समय के दायरे में आता है, और ऐसे में ना मनुष्य के पास आज के समय में इतनी स्पीड है और ना इतनी आयु है। लेकिन करोड़ों करोड़ों वर्षों से जब जब धरती मिटती और बनती रही है, उसी आधार पर मैं आपको अनुभव का आधार कहता हूँ कि ब्रह्मांड सही मायने में ब्रह्मांड में भी चेतन है और वही ब्रह्मांड हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से चेतन है और इसी ब्रह्मांड को समझने का सही रूप अनहद ही है और अनहद को अपने भीतर में उसी अनहद को हद में लाने की क्रिया ही योगिक क्रिया कहलाती है। अगर हम चाहें तो अनहद को अपनी हद में ला सकते हैं। इसका सबसे सहज तरीका योग के माध्यम से ही बताया जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से जानना चाहते हैं तो योग का सारा सर्वोपरि है। आगे हम बात करेंगे ध्वनि की उत्पत्ति पर, अनहद नाद पर और बहुत सारी चीज़ें, और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं आपको अनहद के सही मायने में जो वैदिक अर्थ को भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा होए, तो थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास मैं आपको करता रहूँगा। और मेरी ये जो आप वाणी को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट तक रखें ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। तो चलिए, अनुभवों के आधार पर मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि अनहद क्या है और अनहद के अर्थ को वैदिक और संस्कृत के शब्दों के संधि विच्छेद के अनुसार भी बताने का प्रयास करूँगा। तो नमस्कार, जय श्री हरि। कल मिलेंगे एक नई वाणी के साथ।